ओम शांति। हम सबके बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन जी उपस्थित है। हम सभी दिल से दीदी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है दीदी आपका। आदरणीय उर्मिला दीदी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इंग्लिश में एमए प्राप्त किया है। 81 से ज्ञान में है। आप 85 से ईश्वरीय सेवार्थ अपना जीवन समर्पित किया है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आप राजयोग शिक्षिका हैं। आप ज्ञानामृत मासिक पत्रिका की संपादिका हैं और त्रैमासिक हरियाली पत्रिका की सह संपादिका हैं। दीदी भारत के साथ साथ विदेश में भी, जैसे केन्या, थाईलैंड, बर्मा, नेपाल इत्यादि देशों पर जाके भी ईश्वरीय सेवाएं की हैं। दीदी एक बहुत अच्छा लेखिका है। दीदी का 3 पुस्तक अमृत संजय भाग 1, 2, 3 प्रकाशित हुई है। आज हम सब के लिए दीदी क्लास कराएंगे। विषय है अनुभव की अथॉरिटी। आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय बहुत ही विशेष है, क्योंकि हम केवल सुनेंगे नहीं लेकिन अनुभवी मूर्त बनकर के बैठेंगे। एक होता है सुनना, एक होता है सुनाना, लेकिन सबसे ऊंची अवस्था होती है अनुभव करना। इसलिए कहते हैं कि अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत बड़ी ताकत है। अनुभवी व्यक्ति शक्तिशाली होता है। जैसे दुनिया में भी लोगों के पास लौकिक अथॉरिटीज होती हैं, उसके कारण दुनिया उनके सामने झुकती है, उनका सम्मान करती है। अब जैसे देश का राष्ट्रपति है, उसके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो वो जहां भी जाएगा लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसके आगे झुकेंगे, देश या विदेश कहीं भी। ऐसे ही देश का प्रधानमंत्री, अलग अलग विभागों के मंत्री, या जिले में जैसे कलेक्टर होता है उसके पास भी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। वो जो बात कह दे उसके नीचे वाले लोगों को माननी होती है। ऐसे ही एसपी होता है। ऐसे ही अगर किसी ने साइंटिफिक क्षेत्र में बहुत खोज की है तो वो भी एक अथॉरिटी बन जाता है। धर्म के क्षेत्र में भी कोई शंकराचार्य, कोई महामंडलेश्वर, जिनकी बड़ी बड़ी पदवियां हैं, तो उनका भी उस अथॉरिटी के कारण, शास्त्रों की अथॉरिटी के कारण सम्मान होता है। हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमारे पास कोई पद की अथॉरिटी नहीं है, कोई पढ़ाई की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमारे पास ईश्वरीय अनुभवों की अथॉरिटी है, ईश्वरीय शक्तियों की अथॉरिटी है, प्रेम की, पवित्रता की अथॉरिटी है। हमारा जो धारणामूर्त जीवन है, करनी कथनी एक है, उसकी हमारे पास अथॉरिटी है। और बाबा कहते हैं ये अथॉरिटी बाकी सब अथॉरिटीज को झुकाने वाली है, बाकी सबसे ऊंची और महान है। जैसे यज्ञ इतिहास में हम सुनते हैं कि मम्मा एक बार कानपुर में गई, स्थापना के प्रारंभ के दिन थे तो वहां पे एक एंटी पार्टी थी। एंटी पार्टी ने अखबार में समाचार सुना कि ब्रह्मा कुमारियों की हेड आने वाली है, तो उन सब लोगों ने आपस में मिल करके एक योजना बनाई कि जहां पे प्रोग्राम हो रहा है वहां हम भी जाएंगे, और जब इनकी मम्मा आएगी तो उससे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे और उसको परेशान करेंगे। तो वो लोग सभा में आकर के बैठ गए। मम्मा अपने समय पर सभा स्थल पर गई, मंच पर गई, और मंच पर जो उनका स्थान था उस पर बैठने से पहले वो सारी सभा को ऐसे खड़े होकर के दृष्टि देने लगी। तो उस दृष्टि में ऐसी रूहानियत थी, अलौकिकता थी, सर्वमूल गुणों की खुशबू थी, सबके लिए ऐसी शुभ भावना शुभकामना थी, ऐसा मातृ प्रेम था कि वो जो एंटी पार्टी के लोग थे वो भी एकदम जड़ होके मम्मा को देखते रहे। उनको क्या पूछना था वो भी भूल गए और पूरा समय प्रवचन में एकदम चुप मौन में बैठे, और प्रवचन पूरा होते ही मौन में ही उठ करके चले गए। अगले दिन अखबारों में मम्मा की बहुत महिमा छपी और इस प्रकार से यज्ञ की बहुत अच्छी सेवा हुई। तो ये है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की प्रत्यक्षता। इसको कहते हैं साक्षात स्वरूप और साक्षात्कार मूर्त स्वरूप, जिसमें हमें बिना बोले सामने वालों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना है, प्रभावित करना है, उनको घायल करना है और उनके जीवन का भी परिवर्तन करना है। वैसे भी हम देखें, हम सबको क्या अच्छा लगता है? अनुभव सुनना अच्छा लगता है? कोई भी बड़ी बहन भाई आता है पूछता है क्या सुनाऊं, तो हम कहते अपने जीवन का अनुभव सुनाओ, मम्मा बाबा के साथ का अनुभव सुनाओ, अपने परिवर्तन का अनुभव सुनाओ। अगर मैगजीन में भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो अनुभव होते हैं भाई बहनों के वही पढ़ते हैं, और वो अनुभव एक दो को सुनाने सरल होते हैं, याद बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले हमने ज्ञानामृत में एक अनुभव डाला था, एक शिव बाबा की अनोखी दुल्हन, अगस्त 2024 की मैगजीन में डाला था। तो ये अनुभव इतना वायरल हुआ, एक ने पढ़ा दूसरे को सुनाया, दूसरे ने पढ़ा तीसरे को सुनाया, क्योंकि जब कोई अनुभव लिखता है तो उस अनुभूति में डूब करके लिखता है, और जो पढ़ने वाला है वो अनुभव लिखने वाले के अनुभव के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अगर अनुभव लिखने वाला दुखी हुआ तो पढ़ने वाले को भी दुख अनुभव होता है, अगर वो सुखी हुआ तो पढ़ने वाले को भी सुख अनुभव होता है, अगर वो हंसा तो पढ़ने वाले को भी हंसी आती है। मतलब अनुभव की छाप दिल पर अमिट लगती है, और इसलिए बाबा ने मुरली में कहा था कि जो दुनिया में कथाकार है वो क्या करते हैं, अल्पकाल के लिए अपनी पूरी सभा को नचा लेते हैं, खुद नाचते हैं सबको नचा लेते हैं, खुद हंसते हैं सबको हंसा लेते हैं, और कभी कभी प्रभु के प्यार में जब वो रोते हैं तो सारी सभा को भी रुला लेते हैं। बाबा ने कहा उनकी अल्पकाल की शक्ति है और आपकी दीर्घकाल की अविनाशी शक्ति है, उनका केवल कथन है और आपकी केवल कथनी नहीं लेकिन करनी है, करनी की शक्ति अधिक होती है। इसलिए आप बच्चों को ये लक्ष्य रखना है कि जो भी मेरे सामने आए मैं उसको कुछ ना कुछ अनुभव करूं, ताकि उसकी जो छाप है वो अमिट हो जाए, वो कभी उसे भूले नहीं। जो अनुभवी आत्मा है वो कभी माया से धोखा नहीं खाती, माया से हारेगी नहीं, माया को हराएगी, क्योंकि वो अंदर से भरपूर है। जैसे बीज अंदर से भरपूर होता है ना, तो कितना शक्तिशाली होता है। तो जब आत्मा भी अपने मूल गुणों से और शक्तियों से भरपूर है, कोई भी खालीपन नहीं है, तो वो हर बात में विजयी बनती है। ऐसे को कहते हैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे के सामने जब माया आती भी है तो माया झुकेगी न कि झुकाएगी, माया वार नहीं करेगी, लेकिन ऐसी आत्मा माया को खेल समझेगी, खेल खेल में उसको पार कर लेगी। और अगर कोई अनुभवी नहीं है तो वो माया के किसी भी रूप से धोखा खाएगा। जैसे सीता अनुभवी नहीं थी, यादगार कहानी में क्या दिखाते हैं, सोने का हिरण देखा, उसको ये अनुभव ही नहीं था कि हिरण सोने का नहीं होता है, तो माया के आर्टिफिशियल रूप से, चमकदार रूप से धोखा खा गई। और धोखा खाया तो क्या हुआ, शोक वाटिका में चली गई। इसलिए बाबा कहते हैं आपको धोखा नहीं खाना है, आपको केवल सुनाने के सिंहासन पे नहीं बैठना, केवल स्पीकर नहीं बनना, लेकिन अनुभवों के सिंहासन पे बैठना है। दुनिया में होता है सिंहासन और आपका है अनुभवों का आसन। तो जब आप अनुभवों के आसन पे बैठ के कोई भी बात कहते हो तो आपकी वो बात सफल होती है, आपकी उस बात में कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि जहां अनुभवी है वहां सदा विजयी है। बाबा कहते हैं जो मैंने ज्ञान की एक एक बात सुनाई है उसका अनुभव करो। जैसे बाबा ने सबसे पहले हमें क्या सुनाया कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आपका मूल स्वरूप आत्मिक स्वरूप है, आप हैं ही आत्मा। क्योंकि शरीर को तो आप मेरा कहते हो, तो मैं और मेरा में तो बहुत अंतर है। तो आप अपने इस स्वरूप को ज्ञान से जानते हो कि अनुभव से जानते हो, मैं आत्मा हूं ये नॉलेज तक सीमित है, या मैं आत्मा बन गया हूं, आत्मा हो गया हूं, हर पल अपने उस स्वरूप में टिका रहता हूं, ये अपने आप से पूछना है। जैसे दैहिक स्वरूप हमें अपना लगता है, हम भूलते नहीं, नींद में भी कोई नाम पूछे तो बता देते हैं, तो ये आत्मिक रूप भी अपना लगना चाहिए। और अपनी चीज कभी भूलती नहीं है, किसी वस्तु में भी मेरापन आ जाए, अपनापन आ जाए, एक छोटा सा रुमाल है, एक छोटा सा पेन है, उसमें भी हमारा मेरापन है, तो हम उसको भूलते नहीं। तो इस आत्मिक स्वरूप में भी इतना ही मेरापन होना चाहिए ताकि हम चलते फिरते उठते बैठते इसको भूले नहीं, बार बार इसकी अनुभूति में डूबे रहें। मैं ज्योति बिंदु हूं, मैं बेदाग हूं, मैं अजर अमर हूं, मैं अलिप्त हूं, न्यारा हूं, उपराम हूं, मेहमान हूं, अकेला आया हूं, घड़ी घड़ी ये चिंतन चलता रहे। मेरी कोई इच्छा नहीं है, इस प्रकृति के बने जगत में कुछ भी मेरा नहीं है, ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है। तो बार बार जब हम अपने उस स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो उस स्वरूप की अनुभूति करते हैं, अनुभवी मूर्त बनते हैं। और फिर इस स्थिति में टिक कर जब हम किसी को आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं तो उसको भी अनुभव हो जाता है। अगर हम पहले टिके हुए नहीं तो वो केवल ज्ञान मात्र रह जाता है, उस व्यक्ति के कानों तक तो जाता है लेकिन दिल तक नहीं पहुंचता। वो सुनता है और सुनने के बाद वो भूल जाता है, उसका स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे दुनिया में साइंटिस्ट है, वो किसी एक प्राकृतिक तत्व को ले लेते हैं और उसके ऊपर खोज करते हैं, उसके अलग अलग पहलू के ऊपर चिंतन करते हैं और उस एक तत्व के अनेक पहलू हमारे सामने प्रकट करते हैं। जैसे मान लो सोने के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो बताएंगे कि सोने का गलनांक क्या है, सोने की प्रॉपर्टी क्या है, सोने में क्या क्या धातु मिलाई जा सकती है, ये धातु मिलाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये मिलाएंगे तो क्या होगा, फिर उस मिलावट को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अनुभवों में वो डूबे रहते और नई नई बातें दुनिया के सामने लाते। तो बाबा कहते, आप बच्चे भी तो बहुत बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हो ना, तो आप भी एक्सपेरिमेंट करो। वो प्रकृति पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तत्वों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप प्रकृति की मालिक आत्मा पर एक्सपेरिमेंट करो। तत्व तो जड़ है, आप जड़ पर नहीं चेतन पर एक्सपेरिमेंट करो, अर्थात अपने आप के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करो। जैसे आत्मा के मूल अनादि गुण कितने हैं, कितने हैं मूल अनादि गुण? 7। तो उसमें से मान लो हमने एक गुण को ले लिया, आनंद को ले लिया, तो आनंद कहते किसको हैं? आनंद की अनुभूति कैसे की जा सकती है? जब आनंद स्वरूप की अनुभूति होती है तो खुद को क्या प्राप्ति होती है और जो कनेक्शन में आने वाली आत्माएं हैं उनको क्या प्राप्ति होती है? जब हम आनंद स्वरूप में डूबे रहते हैं तो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, लिखो, बार बार उस अनुभव को दोहराओ और फिर ऐसे वातावरण में जाओ जहां आनंद का अभाव है और वहां फिर अपने उस अनुभव को रिपीट करो। आनंद स्वरूप स्थिति में टिक करके हम उस स्वरूप में बैठे और हमने वो आनंद की किरणें फैलाई तो क्या उस वातावरण में कोई परिवर्तन आया? क्योंकि ज्ञान केवल सुनने सुनाने का नहीं है, अनुभव के द्वारा इसको बढ़ाते जाना है। जैसे गोताखोर होते हैं तो वो पानी की गहराई में जाते हैं और नए नए मोती, नई नई चीजें लेकर के आते हैं। तो जैसे अभी हमने कहा कि वो तो पानी में डूबते हैं, पानी तो एक तत्व है, वो तो एक बाह्य चीज है, हमको किसी बाह्य चीज में नहीं डूबना, हमको अपने ही भीतर डूबना है, अपने ही भीतर उतरना है। जैसे दादी जानकी कहती थी कि मैं 80% भीतर रहती हूँ और केवल 20% बाहर रहती हूँ। तो हम अपने भीतर जाएंगे, अपने स्वरूप में उतरेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा? मैं आत्मा 5000 साल पुरानी हूं, तो इन 5000 सालों में जो समय गुजरा उसके अनुभव मेरे भीतर है। मैंने सतयुग को भी देखा है, त्रेता को भी देखा है, द्वापर को भी देखा है, कलयुग को भी देखा है, संगम को भी देख रही हूं, पांचों युगों के अनुभवी हूं। पर वो अनुभव है कहां? बाहर जो किताबों में लिखे हैं, जैसे दुनिया की किताबों में द्वापर युग की हिस्ट्री लिखी है, पर वो कोई संपूर्ण सत्य थोड़े ही, अनुमान के आधार पे, एक दूसरे से सुन के उस आधार पे लिखी गई है। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री तो है ही नहीं, लेकिन मेरे भीतर पूरा का पूरा इतिहास। तो अगर मैं अंदर जाऊं, एकांत में बैठूं, अपने आप पर एकाग्र हो जाऊं, एक लक्ष्य को लेकर के अंतर्मुखी बन जाऊं, तो मुझे अपने भीतर वो सब दृश्य दिखाई देंगे जिनमें मैं क्रॉस होके आई। तो बाबा ने कहा स्पिरिचुअल गोताखोर बनो। जैसे मछली होती है, उसका प्रेम पानी से है, पानी से बाहर आना नहीं चाहती, बाहर ले आओगे तो तड़फेगी, फिर पानी में जाएगी। हां, पल भर के लिए पानी से बाहर मुंह अगर निकालेगी भी तो फिर अंदर चली जाएगी, उसका जीवन ही पानी। तो ये जो अंतर्मुखता की गुफा है, हम तपस्वियों का भी वही जीवन है, हमें भी वही आनंद आता है, हमारा मन भी वही लगता है। हम उस अंतर्मुखता की गुफा में एकांत में रमण करते रहें, नया नया खोजते रहें, कर्म करने के लिए कुछ समय के लिए इंद्रियों का आधार लिया, बाह्य जगत में आए और फिर भीतर चले गए। भीतर की दुनिया बहुत रिच है, बहुत मालामाल है, उसमें बहुत हीरे मोती माणिक और जवाहरात, और बाहर की दुनिया में क्या है, हलचल है, तूफान है, कहा सुनी है, तेरा मेरी है, व्यर्थ वाणी है, व्यर्थ कर्म है, व्यर्थ दृष्टि, व्यर्थ वृत्ति है, शक्ति का ह्रास होता है बाह्य जगत में, भीतर के जगत में शक्ति भरती है, हम शक्ति संपन्न बनते हैं, हमारा सशक्तिकरण होता है। इसलिए हम बार बार भीतर जाएं, अनुभव करें। और बाबा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि जैसे दुनिया की चीजें हैं, मिश्री है, मिश्री को आप नीम के पत्ते में भी लपेट दो, करेले के अंदर डाल दो तो भी अपना मिठास नहीं छोड़ती। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बर्फ है, ठंडक बिना मेहनत के अनुभव करवाती है, फूल है, अपनी खुशबू को ऑटोमेटिक बिखेरता है, अग्नि है, एक तो दूर से उसकी रोशनी दिखाई देती है और उसकी गर्माहट भी महसूस होती है। तो जैसे प्रकृति के ये पदार्थ अपने गुण को प्रकट करते हैं, आपको ने शांत स्वरूप आत्मा, तो आप भी अपने शांति के गुण को प्रकट करो। जो भी आपके नजदीक आए उसे बिना बोले बिना कुछ सुनाए शांति का अनुभव, वो ये कहे कि जब भी हम आपके पास आते हैं हमें शांति की लहरें आपसे प्राप्त होती, जितने भी हमारे गुण है, शक्ति का गुण है, पवित्रता का गुण है, नम्रता का गुण है, तो इन गुणों की ऑटोमेटिक सामने वालों को अनुभूति हो। बाबा ने कहा जब आप ऐसे अनुभव कराएंगे ना तब लोगों का जीवन बदलेगा और तब आपकी याद भी नेचुरल हो जाएगी। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बाबा को याद कैसे करूं या मुझे याद भूल जाती है, सब तक याद बनी रहेगी और इस स्थिति में माया भी किनारा कर लेगी, क्योंकि हम बिजी होंगे, शक्तिशाली होंगे तो माया ऑटोमेटिक नजदीक नहीं आएगी। तो ये तो हो गए हम आत्माओं के निजी गुण, ऐसे ही बाबा भी गुणों के भंडार हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। तो क्या हमने बाबा के उन गुणों का अनुभव किया है, एक एक गुण को अपने भीतर भरा है? जैसे बाबा सुख का सागर है और मैं आत्मा जिसने अनेक जन्म सुख को खोजा, अब मुझे पता पड़ा कि मैं सुख स्वरूप हूं लेकिन सागर तो शिव बाबा है, तो मेरी सुख की प्यास, सदाकाल के लिए तृप्त तब होगी जब मैं उस सुख के सागर के साथ कनेक्ट हो जाऊं। जैसे हम अपने घर की बिजली को पावर हाउस के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी बिजली हमेशा जलती रहती है, तो वो पावर हाउस है, मैं आत्मा उसके साथ कनेक्ट हुई, तो क्या इस कनेक्शन की मुझे अनुभूति है? कनेक्ट हो गई और उसकी सुख की किरणें मुझ पे उतरने लगी और मैं इस सुख के एहसास में समय का भान भूल गई, स्थान का भान भूल गई, मैं उस सुख रूपी अमृत को पीती रही पीती रही, उस सुख सागर की जो सुख की किरणें वो मेरे चारों ओर बिखरी रही, मैं उन किरणों से खेलती रही, उन किरणों में झूला बना के झूलती रही, उन किरणों को मैंने अपने अंदर समा लिया और मुझे ऐसे लगता है कि उन किरणों को समाते समाते मैं भी मास्टर सुख का सागर बन गई। ये मुझे अनुभव करना है। अब मुझे न तो किसी व्यक्ति से सुख चाहिए न किसी वस्तु से सुख चाहिए, क्योंकि मुझे अविनाशी सुख मिल गया। दिन हो रात हो ये सुख हमेशा मेरे साथ है, इसे कोई छीन नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं जो इस सुख को कम कर दे। और इन सुख की किरणों से भरपूर मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर के जो ऊंचे से ऊंचा टावर है यानी कि परम धाम है वहां बैठ गई, बिंदु बन करके बिंदु के साथ कंबाइंड होकर के वहां बैठ गई। और जो अपने भीतर सुख की किरणें भरी हैं वो मैं इस प्रकृति और मानव आत्माओं को प्रवाहित कर रही हूं। बाबा तो सुख का सागर है, उसके साथ मैंने अपनी किरणें भी कंबाइंड कर दी और मैं वहां बैठ करके अनुभव कर रही हूं कि आत्माओं को सुख की अनुभूति हो रही है। जैसे आप दाना डालते हो तो चिड़िया कबूतर दाना लेने आ जाते हैं, पानी का बर्तन रखते हो तो पक्षी पानी पीने आ जाते हैं, ऐसे ही हमने सुख की किरणें बिखराई और जो दुखी आत्माएं हैं सुख को खोज रही हैं, हमें महसूस हो रहा है कि वो उन किरणों को ग्रहण कर रही हैं, उन किरणों को महसूस कर रही हैं, उनका दुख कम होते जा रहा है। तो ये भी अनुभव की स्टेज, ये अनुभव हमें रोज करना है। और ऐसे अनुभव करते करते हम अनुभव की अथॉरिटी सुख की अथॉरिटी बन जाते हैं। कोई पूछता है सुख कहाँ है तो हम क्या कहेंगे? सुख तो हमारे भीतर है, सुख तो सदा हमारे साथ है, हम भी मास्टर सुख के सागर हैं। बाबा ने कहा द्वापर युग से आत्माएं केवल सुनती और सुनाती आई, लेकिन अब द्वापर भी नहीं है, कलयुग भी नहीं है, ये तो नया युग है, नया समय है और नई अनुभूतियों से ही नया युग आएगा। अगर हम पुरानी चाल चलते रहे तो नया युग कैसे आएगा? तो नए युग का नया ज्ञान क्या है? नई नई खोज करो, नवीनता लाओ अपने जीवन में, हर रोज नया अनुभव करो, हर रोज कुछ नया सीखो, क्योंकि अभी हम संगम युग पर हैं और संगम युग है ही नवीनता का युग, इसलिए दुनिया वाले भी कहते हैं तुम्हारी सब बातें नई, क्योंकि हमारा बाबा भी हमें नया सिखाता है और उस नए को हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। हमने अपने बड़ों के मुख से सुना है कि ब्रह्मा बाबा का एक स्लोगन था, जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। ऐसे नहीं जैसे मैं बोलूंगा और मेरा सुना हुआ और करेंगे। बोले हुए को लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन किए हुए को देख करके लोग फॉलो करते हैं। जैसे पुराने जमाने में रेडियो था, तो रेडियो की बातों का लोगों को इतना आकर्षण नहीं होता था, कोई सुनता था कोई नहीं सुनता था, और फॉलो तो बिल्कुल नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से टीवी आया तो टीवी क्या करता है, जो बोलता है वो करके दिखा देता है, तो लोगों को ज्यादा आकर्षण किसका है, टीवी का ज्यादा आकर्षण है, रेडियो का नहीं। तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना है, रेडियो जैसा कि टीवी जैसा, कैसा बनाना है, टीवी जैसा बनाना है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन पारदर्शी बनाया। उनके पास दो अथॉरिटी थी, एक ज्ञान की अथॉरिटी थी, एक अनुभव की अथॉरिटी थी, दोनों कंबाइंड हो जाती थी। इसलिए बाबा का एक एक शब्द बच्चों के जीवन को परिवर्तन कर देता था, एक एक शब्द चरित्र बन गया, एक एक शब्द यादगार बन गया। बाबा ने कब क्या बोला, वो बातें ही तो हम जीवन कहानी में सुनते, तो वो बातें अनुभवी बातें थी, अनुभव से भरी हुई बातें थी। तो बाबा हम बच्चों को भी कहते हैं कि ज्ञान तो आप रोज सुनते हो, ज्ञान की अथॉरिटी तो आपके पास है, तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है। लेकिन क्या जो कुछ बाबा से सुनते हो उसका अनुभव भी है, एक एक बात का अनुभव है। जैसे बाबा कहते हैं ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, क्या इसका अनुभव है, मक्खी भी सामने से गई तो एक कल्प पहले का सीन रिपीट हुआ है, इसमें ना कोई आश्चर्य की बात है, ना क्यों की बात है, ना क्या की बात है। क्या हम ड्रामा के पट्टे पर ऐसे अडिगुर अटल होकर के चलते हैं? तब हम कहेंगे कि हाँ हम ड्रामा की पॉइंट के अनुभवी। लेकिन मन में क्यों आता है, क्या आता है, कैसे होता है, ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, इसका मतलब ये है कि ड्रामा का ज्ञान तो है लेकिन अनुभव नहीं। मान लीजिए कोई प्रतिकूल दृश्य सामने आया, हमें पसंद नहीं है, और दृश्य को देख करके हम दुखी हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्रामा का ज्ञान है। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान कहता है जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी, जो हो चुका वो भी कल्याणकारी, जो आगे होगा वो भी कल्याणकारी। तो अगर मैं इस अनुभव में स्थिर हूं, स्थित हूं, तो कुछ भी हो मुझे अनुभव होगा कि मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, संगमयुग कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, बाप ने कहा है मैं अकल्याण को भी कल्याण में बदल दूंगा, तुम निश्चय बुद्धि होकर के चलते रहो। तो अगर मैं निश्चय बुद्धि हूं मतलब मैं अनुभवी हूं, तो ऐसे जितने भी पॉइंट उन सब के स्वरूप में टिकना, इसको कहते ही हैं ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभवी बन। ऐसे ही मम्मा भी अनुभवी मुहूर्त थी। मम्मा के जीवन की एक और घटना मुझे याद आ रही है, जब यज्ञ कराची में था तो अमृत वेले उस समय योग नहीं होता था। एक मॉर्निंग में मम्मा को तो 2 बजे उठने का अभ्यास था, योग करती थी, और योग करने के बाद वो किचन में चली गई, एक भी बच्चा नहीं उठा था। तो किसी बच्चे ने देखा और बाकी बच्चों को कहा मम्मा किचन में गई, उठो उठो उठो, तो सब दौड़ करके किचन में गए मम्मा के पीछे जाके खड़े हो गई। तो मम्मा ने कहा, बच्चे तुम्हारे जो भगत है वो उठ करके आपके दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच गए, घंटी बजा बजा के आपका आह्वान कर रहे, आपको भोग प्रसाद चढ़ा रही हैं, आपकी स्तुति कर रही। आप चेतन देवता क्या कर रही हो? अब जब बच्चों ने ये बात सुनी, चेतन देवताओं को तो जड़ देवताओं से पहले जागना चाहिए, इसलिए भक्तों का समय 5 बजे, तो चेतन देवताओं का समय कौन सा होगा? उससे पहले होगा, क्योंकि उनसे पहले उठेंगे तब तो भक्तों को वाइब्रेशन देंगे। तो ये इतना अच्छा उनको अनुभव करवाया कि उसके बाद कोई भी बच्चा उठने में लेट नहीं हुआ। अनुभव की ऐसी छाप लगाई, बच्चों को अनुभव हो गया कि हम देवता हैं, भुवनार देवता हैं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। ऐसे ही मम्मा किसी सेंटर पे गई थी, तो वहां की जो दादी थी उसने भोग में खजूर बांटे थे, तो सब बच्चों ने भोग खाया और खजूर के अंदर तो गिट्टक होती है, तो भोग खाने के बाद वो खजूर की गिट्टक ऐसे हाथ में लेके बैठे रहे। मम्मा ने देखा तो मम्मा ने उन दादी को कहा, बहन तुम जानती हो ये सब जो बैठे हैं ये कौन है? ये होवनहार राजकुमार राजकुमारियां हैं, और ये गिट्टक मुट्ठी में लेके बैठे हैं ये शोभा नहीं देता है, इसलिए जब भी खजूर खिलाओ तो खजूर की गिट्टक निकाल के उसमें मूंगफली डाल दो और तब इनको खिलाओ। तो देखो कितना अच्छा अनुभव कराया, सारे बच्चों के स्वमान को जागृत किया, और उसके बाद उस दादी ने जीवन में जब भी खजूर दिया तो इसी प्रकार से दी। तो केवल ज्ञान के अनुभवी नहीं, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल कर्म करते हैं, हमारा चलना फिरना वो सब कुछ भी हमारी अथॉरिटी के अनुसार, हम होवनहार देवता हैं, सतयुग के राजकुमार राजकुमारियां हैं, तो हमारा खाना पीना चलना फिरना बोलना सब कुछ वैसा ही। जैसे भक्ति मार्ग की गीता में बाबा ने कहा है कि मैं प्राकृत मनुष्यों की तरह से प्राकृत जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक, मेरा हर कर्म भी अलौकिक। तो मेरे साथ साथ आप बच्चों का जन्म भी दिव्य, साधारण जन्म नहीं। तो जब दिव्य जन्म है तो हम सबके कर्म भी कैसे होने चाहिए? साधारण मनुष्यों जैसे नहीं, हमारे कर्म भी दिव्य और अलौकिक होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि जो लौकिक बड़े लोग वो जिस भी समारोह में जाते हैं वैसी अपनी ड्रेस पहन लेते हैं। जैसे मान लो किसी मंदिर या तीर्थ के समारोह में जाना होगा तो उस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, शादी ब्याह में जाना होगा तो वैसे कपड़े पहनेंगे, अगर किसी की मृत्यु हुई है श्रद्धांजलि देने जाना है तो उस प्रकार के कपड़े पहनेंगे, उनमें कॉमन सेंस होती है और इस कारण से उनकी महिमा भी होती है। बाबा ने कहा मन में बेशक वो चीज ना हो लेकिन बाहर से दिखावा तो करते हैं ना, रियल नहीं हो पर बनावट तो ऐसी बनाते हैं ना, तो वो बनावट करने में होशियार है। आप अपनी रियलिटी में होशियार बनो। कोई भी कर्म करने की तैयारी करते हो उससे पहले अपनी मन की स्थिति की भी तैयारी करो, अपने मन को भी वो ड्रेस पहनाओ। जैसे मान लो कुछ लोगों से मिलने जाना है तो मन को कौन सी ड्रेस पहनानी है? आत्मिक दृष्टि की ड्रेस पहनानी है, रूहानियत की ड्रेस पहनानी है, उनको रूहानी दृष्टि से देखना है, आत्मिक भाव से देखना है, ये तैयारी करके फिर उनके सामने जाना है। मान लो मंच पे भाषण करना है तो जो सभा में विराजमान है उन सबको केवल शब्दों से नहीं लेकिन आंतरिक शक्ति के वाइब्रेशन भी देने हैं, शुभ भावना शुभकामना भी देनी है, अपने स्वमान में टिक करके उनको स्वमान में भी टिकाना है। तो ये हमारी स्थिति की ड्रेस। अगर हम किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो भी हमें रूहानी मनोरंजन की स्थिति में टिकना है, हंसना है मुस्कुराना है, लेकिन देवताओं की भांति मुस्कुराते हुए देवता कितने आकर्षक लगते हैं, जोर जोर की हंसी नहीं लेकिन फरिश्तों जैसी देवताओं जैसी मुस्कान। तो वो स्थिति हमें पहले से बनानी है। जैसे वो अपनी ड्रेस घर से पहन करके जाते हैं तो हम भी उस प्रकार का मानसिक स्वरूप बना करके जाएं तो हमें कई गुना सफलता मिलेगी और लोग हमारी वाह वाह भी करेंगे। जीवन में कई बार कई समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, और उस समय अगर हम सहन शक्ति का आह्वान करते हैं तो कई बार सहन शक्ति आती नहीं, हम बुलाते ही रह गए और जब वो सब कुछ हो गया, स्थिति हिल गई, फिर याद आया कि अरे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते तो ठीक रहता, पर अब तो समय निकल गया। जब शत्रु सामने था तब तो हथियार याद नहीं आया, यूज नहीं किया, और जब वो घायल करके चला गया तब हथियार याद आया, तो घायल तो हो गई। तो इसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई कि सहन शक्ति रूपी गुण को लो और उस पर चिंतन करो कि सहन शक्ति क्या है। अगर मेरे भीतर सहन शक्ति होगी तो उसके क्या फायदे होंगे, सहन शक्ति की कब कब जरूरत पड़ती है, और जब सहन शक्ति से हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम पे क्या असर आता है, ये पहले से मनन कर। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी जो सेना है वो युद्ध अभ्यास करती है, किसी देश ने हम पे आक्रमण किया नहीं है लेकिन आक्रमण से पहले सेना दो भागों में विभाजित होकर के एक आक्रमणकारी पार्टी बनती है, एक देश की रक्षक पार्टी बनती है, और रियल युद्ध की तरह से वो युद्ध का अभ्यास करती है। क्यों करती है, उसमें बहुत समय भी लगता है, शक्ति भी लगती है, और उसमें बहुत खर्चा भी होता है, पर क्यों करती है, इसलिए कि जब रियल युद्ध आए तो हम एक्सपर्ट हो चुके हों और उस रियल युद्ध का सामना करने में हमें भय ना लगे, क्योंकि हम तो पहले ही रिहर्सल कर चुके हैं। कोई ड्रामा करना हो तो उससे पहले रिहर्सल होती है, फिर फाइनल होता है तो अच्छा होता है। तो बाबा ने कहा सहन शक्ति का फाइनल प्रयोग करने से पहले आप एकांत में उसका रिहर्सल करो, केवल सहन शक्ति का नहीं समाने की शक्ति का भी। एक दृश्य देखो कि कोई व्यक्ति आपको बहुत कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ब्लेम लगा रहा है, और उस समय मैं क्या कर रही हूं, मैं आत्मा सब कुछ सुनते हुए भी बिल्कुल नहीं सुन रही हूं, सब कुछ सुनते हुए भी सागर की तरह अंदर लेके जा रही हूं, समा रही हूं, और सब कुछ सुनते हुए भी उसके लिए शुभकामना रख रही हूँ। सब कुछ सुनती भी जाती हूँ और उसको माफ भी करती जाती हूँ, उसके लिए दुआ भी करती जाती हूँ। ये हमको पहले रिहर्सल करनी है, फिर जब रियल ये सीन सामने आएगा तो हमको कोई मेहनत नहीं लगेगी, हम उसे पार हो जाएंगे। तो बाबा कहती हैं, इन शक्तियों को स्टॉक में मत रखो, गुणों को भी। जैसे लोगों के पास आजकल गहना है, जेवर है, बैंक में रख देते, खुशी भी नहीं है। घर में हो तो कम से कम देख देख करके खुश तो हो कि मेरे पास इतना गहना है, देख भी नहीं पाते, लॉकर में बंद है, जिंदगी भर लॉकर में बंद रहता है। कई बार तो उसकी मृत्यु के बाद कोई दूसरा ही उस लॉकर को खोल के उसको यूज करता है। तो ये जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, गहने हैं, जेवर हैं, इनको लॉकर में बंद मत रखो। इससे संतुष्ट मत हो जाओ कि हाँ हमको ज्ञान आता है, हमको पता है, सहन करना चाहिए, इससे संतुष्ट मत हो जाओ। लेकिन उसका बार बार प्रयोग करके देखो, उस जेवर को बार बार पहन करके देखो। कईयों को शौक होता है ना, बिना किसी ओकेजन के भी डब्बा निकालते हैं, पहन के देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हम कैसे लग रहे हैं। तो हमको भी बार बार इन ज्ञान रत्नों का प्रयोग करना है, शस्त्रों को चला करके देखना है, ताकि मौके पे हम चला सके। और फिर बाबा ने कहा कि देखो, आपको जो योग सिखाया है ये सर्वोच्च योग है, बाकी सारे योग या तो इसकी किसी एक छोटी सी बात को लेकर के बनी है या इसकी कॉपी है, लेकिन रियल तो यही है। और इसके कितने नाम है, ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, सहज योग है, सन्यास योग है, भक्ति योग है, समत्व योग है, बहुत सारे नाम है। तो एक एक नाम का अनुभव करो। जैसे बाबा ने कहा सहज योग, सहज योग का मतलब क्या है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो क्या मुझे सहज योग का अनुभव है? अगर केवल बैठ के ही मेरा योग होता है, इसका मतलब मैं सहज योगी नहीं। अगर मधुबन में ही मेरा योग लगता है, सेंटर पे जाके ही मेरा योग लगता है, इसका मतलब मैं सहज योगी नहीं। पर बनना तो मुझे सहज योगी है, तो मैं सहज योगी बन, हर स्थान पे, हर स्थिति में मैं योग युक्त हो सकूं। इसी तरह से एक कर्म योग है, तो क्या मुझे कर्म योग का अनुभव है? कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म करते हुए योग, कोई भी कर्म, सफर करना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, खरीदारी करना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, मिलना जुलना भी कर्म है, कोई भी कर्म। तो क्या उस कर्म को करते मैं योग का अनुभव करता हूँ, बाबा के साथ का अनुभव करता हूँ? क्या मुझे कर्म योग का अनुभव है? या कर्म होने के बाद याद आता है, अरे बाबा को याद करना ही भूल गए? या कर्म करते बैलेंस बनाना मुश्किल लगता है, या तो पलड़ा कर्म की तरफ झुक जाता है, या तो पलड़ा योग की तरफ झुक जाता है, फिर कर्म नहीं होता है। तो क्या मुझे बैलेंस बनाना आता है? क्या मैं कर्म योग का अनुभवी हूं, या सिर्फ कर्म योग नाम सुना है, अनुभव नहीं होता? हाथों से काम करना शुरू किया और बुद्धि भाग गई, मन चंचल हो गया, बुद्धि भटकने लगी, पुराने संस्कार जागृत हो गई, फिर काम छोड़ करके कुछ पढ़ा लिखा तब मन फिर एकाग्र हो गया, तो ये तो कर्मयोग का अनुभव नहीं हो। तो इसका भी अनुभव करना है, फिर ये ज्ञान योग है। तो क्या ज्ञान का चिंतन करते करते मुझे योग का अनुभव होता है या केवल ज्ञान की स्मृति रहती है पर ज्ञान के साथ योग नहीं जुटता? क्या मुरली सुनते मैं योग युक्त रहता हूं? फिर ये संन्यास योग है। संन्यास योग मतलब क्या? बुराइयों का संन्यास, घर परिवार में रहते हुए। तो क्या मुझे अनुभव होता है कि मैं सच्चा सन्यासी हूं, वेद का सन्यासी हूं, रहता संसार में हूं लेकिन पूरी दुनिया का मैंने देह सही देह के सब संबंधों का सन्यास कर लिया, ऐसा सन्यास योगी हूं? फिर ये समत्व योग है। समत्व योग मतलब निंदा स्तुति हानि लाभ पाप पुण्य सब में एक समान, क्या मुझे उसका अनुभव है? या निंदा आई तो मन छोटा हो गया, स्तुति आई तो मन एकदम ऊंचा ऊपर उड़ गया, लाभ हुआ तो वाह वाह, हानि हुई तो हाय हाय, तो फिर मैं समत्व योगी नहीं हुआ? तो मुझे इसका भी अनुभव करना है, तब कहेंगे अनुभवी। और इसी तरह से भक्ति योग भी है। ये भक्ति में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, त्याग प्रेम और समर्पण। तो क्या मैं सचमुच सच्चे भक्तों की तरह से एक रस प्रेम में डूबा रहता हूं? क्या मेरे जीवन में देह अभिमान का संपूर्ण त्याग है? क्या एक निष्ठ प्रेम है भगवान से? और क्या भगवान के आगे समर्पण है? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, जो खिलाएंगे मैं वही खाऊंगा, जहां बिठाएंगे मैं वही बैठूंगा, जैसे चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा, इसको कहते हैं भक्ति योग। तो योग के जो अलग अलग स्वरूप हैं उन सब का हमें अनुभव हो, तब हम कहेंगे योग के अनुभवी बन गए। और ऐसे जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली कैसे सुनते हैं और कैसे सुननी? अनुभवी मूर्त बन के मुरली सुननी। जैसे बाबा ने कहा, तुम सब आत्माएं परम धाम निवासी हो, परम धाम से सृष्टि मंच पर आए हो पार्ट बजाने। तो जैसे ही बाबा ने ये बोला, मेरा मन परम धाम पहुंच गया, परम धाम में स्थित हो गया, परम धाम की शांति का अनुभव करने लगा। और फिर परम धाम से मैं आत्मा रंगमंच पे उतर के आई, ये अनुभव होने लगा। बाबा ने जो बोला मेरी वैसी ही स्थिति बन गई। फिर बाबा ने कहा, विश्व की सब आत्माएं आपके भाई भाई, तो मेरी बुद्धि में सारा विश्व इमर्ज हो गया, ग्लोब की सब आत्माएं इमर्ज हो गई, सब आत्माएं भाई भाई, वो दृश्य मुझे दिखाई देने लगा। फिर जैसे बाबा ने अगली बात कही कि तुम बच्चों ने सतयुग में 8 जन्म लिए, तो मेरे सामने मेरा सतयुगी रूप इमर्ज हो। सतयुग का पहला जन्म देवता या देवी के रूप में था, दूसरे जन्म में भी 2 ताजधारी, तीसरे जन्म में भी, क्योंकि मन तो सेकंड में सारी बातें सोच लेता है, बाबा की बात सामने आए इतनी देर में तो मन कहीं भी जा सकता है, अनुभव करने में देर थोड़ी लगती है, एक सेकंड से भी कम समय में हम उस स्थिति में टिक सकते हैं। तो फिर हम सतयुग में चले गए। फिर बाबा ने कहा, दुनिया कब्रिस्तान है, सब मरे पड़े हैं, इसे क्या दिल लगाना? तो हमारे सामने सीन इमर्ज हुआ, सचमुच ये दुनिया तो कब्रिस्तान है, आत्माएं शरीर में मौजूद है पर आत्माओं में सद्गुणों और मूल्यों का श्वास नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे मूल्यों की रोशनी भीतर में नहीं है, जिंदा होते भी जैसे ना जिंदा की तरह से। तो बाबा ने जो शब्द बोला, मैंने उसको उसी रीति से अनुभव किया तो क्या होगा, एक एक वर्षांश से ताकत मिलेगी, भूलेगा नहीं वो और दिन भर वो याद आते रहेंगे। हम ये जो शिकायत करते हैं कि मुरली भूल जाती है, वो शिकायत खत्म हो जाएगी और उन महावाक्यों की दिन भर शक्ति मिलती रहेगी। और जब कोई भी सिचुएशन आएगी तो मुरली का वो महावाक्य एक शस्त्र की तरह से हमारे काम आएगा। तो अनुभवी बन करके रोज की मुरली सुननी, इसे हम अपनी आदत बना लें, नियम बना लें। और फिर बाबा ने कहा कि अगर दुनिया में बुद्धि भटकती है, मन चंचल होता है, तो उसका एक ही कारण है कि परमात्मा के प्यार का अनुभव किया नहीं है। परमात्मा के प्यार के अनुभव को एक तरफ रखो और इंद्रियों के सुख को एक तरफ रखो और दोनों का कंट्रास्ट करो, दोनों के अंतर को समझो। ये सुख कितना चलता है, ये सुख कितना थोड़ी देर चलता है, इस सुख की प्राप्ति क्या है, और ये सुख नाम का सुख है लेकिन अंदर दुख समाया है। जब आप दोनों के अंतर को अनुभव करोगे तो ऑटोमेटिक मन इंद्रिय सुख से हट करके ईश्वरीय सुख की तरफ लगेगा। फिर ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि इंद्रियां धोखा देती हैं या दुनिया की चीजों में आकर्षण जाता है या क्या करें, मन एकाग्र नहीं होता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक भंवरा पहले तो बहुत इधर उधर उड़ रहा था, फिर जब उसे फूल मिल गया और फूल का मकरंद चूसने लगा तो वो उसमें इतना मशगूल हो गया कि आप उस पेड़ को हिला दो, फूल को हिला दो तो भी वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि अब उसे आनंद आने लगा। तो जब हम ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय प्रेम में डूब जाते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है, भटकना बंद हो जाती है और हमारी सब शिकायतें खत्म हो जाती हैं, हम विजयी मायाजीत बन जाते हैं। तो अनुभवी अर्थात मायाजीत, अनुभवी अर्थात प्रकृति जीत, अनुभवी अर्थात इंद्रिय जीत। ओम शांति।
प्रेम स्वरूप में।